छह ढाला।
तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समार के।
वीत राग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है, वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूँ।
जी त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कारी, कहे सीख गुरु करुणा धारी।
तीनों लोकों में जो अनंत जीव हैं, वे सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत रहते हैं, इसलिए श्री गुरुदेव दया धारण करके दुख दूर करने वाली और सुख देने वाली शिक्षा देते हैं।
ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूली आपको भर मतवादी।
हे भव्य जीवो, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मन को स्थिर करके उस शिक्षा को सुनो। अनादिकाल से यह जीव मोह रूपी तेज शराब पीकर अपने आप को भूला हुआ है और व्यर्थ भ्रमण कर रहा है।
सांस भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में अठ दस वार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो।
इस जीव के भ्रमण की कहानी बहुत बड़ी है, फिर भी मुनियों ने जैसी कही है मैं उसमें से कुछ कहता हूं। इस जीव का अनंत काल तो एक इंद्रिय शरीर धारण कर निगोद में व्यतीत हो गया। वहां यह जीव एक श्वास जितने काल में 18 बार उत्पन्न हुआ, मरा और दुखों का बोझ उठाता रहा। निगोद से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि हुआ अथवा वायु या प्रत्येक वनस्पति हुआ।
दुर्लभ लहि जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लहि तस तनी, लट पिपील अलियाद शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर।
जिस प्रकार चिंतामणि रत्न प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार कठिनाई से त्रस पर्याय प्राप्त की। वहां लट चीटी भौरा आदि के शरीर धारण कर करके मरा और इसने बहुत पीड़ा सहन की।
कबहू पंचेंद्रिय पशु भया, मन बिन निपट अज्ञानी थया, सिंहादिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हति खाए भूरी।
कभी पंचेंद्रिय त्रियंच हुआ तो बिना मन के अर्थात असंगी होने के कारण बिल्कुल अज्ञानी रहा। कभी सैनी मन सहित त्रियंच हुआ तो सिंह आदि क्रूर पशु हुआ, तब उसने बहुतेरे निर्बल पशुओं को मारकर खाया।
सहीन सबलन करी खायो अति दीन छेदन भेदन भूख पियास भार वहन हिम आतप त्रास बध बंधन आदिक दुख घने कोटि जीव ते जात न भने अति संक्लेश भावते मर्यो घोर श्वभ्र सागर में पर्यो।
कभी वो स्वयं निर्बल हुआ तो अत्यंत दीन वो बलवानों द्वारा खाया गया। पशु पर्याय में इसने छेदा जाना भेदा जाना भूख प्यास बोझा ढोना सर्दी गर्मी का त्रास बध होना बांधा जाना आदि अनेक दुख उठाए वे करोड़ों जीवों से भी कहे नहीं जा सकते। ये जीव अत्यंत संक्लेश भाव से मरा और भयानक नरक रूप समुद्र में पड़ा।
तहां भूमि पर सत दुख ईसा बिछू सहस डसी नहीं तिसा तहां राध शोणित बाहिनी कृमि कुल कलित देह दाहिनी।
वहां उन नरकों में भूमि के छूते ही ऐसा दुख होता है जैसा हजार बिच्छुओं के काटने से नहीं होता है। वहां कीड़ों के समूह से भरी हुई देह को जलाने वाली पीव और खून की नदी है।
सीमर तरु जुत दल असि पात्र असि जो देह विदार तत्र मेरु समान लोह गली जाए ऐसी शीत उष्णता थाए।
वहां अर्थात नरकों में तलवार की धार के समान पैने पत्तों वाले सेमर वृक्ष हैं जो तलवार के समान शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। वहां ऐसी ठंड और गर्मी पड़ती है उस सुमेरु पर्वत के बराबर लोहा भी गल जाता है।
तिल तिल करे देह के खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड सिंधु नीर ते प्यास न जाए तोपन एक न बूंद लहाए।
वे नारकी एक दूसरे के शरीर के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं और उन्हें अत्यंत क्रोध स्वभावी दुष्ट असुर कुमार नामक देव परस्पर भिड़ा देते हैं। उनकी प्यास समुद्र जितने जल से भी नहीं मिट सकती तो भी उन्हें जल की एक बूंद भी नहीं मिलती।
तीन लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कणा न लहाए ये दुख बहु सागर लो सहे करम जोगते नरगति लहे।
वे नारकी तीन लोक का अनाज भी खा लें तो भी उनकी भूख नहीं मिट सकती किंतु उन्हें अन्न का एक कण भी नहीं मिलता। इस जीव ने अनेक सागरों पर्यंत नरकों में ये दुख सहन किए फिर शुभ कर्म के योग से इसे मनुष्य गति प्राप्त हुई।
जननी उदर बस्यो नव मास अग संकुचते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे ओर।
ये जीव माता के पेट में 9 माह रहा वहां अंगों का संकोच होने से बड़ी पीड़ा सही। वहां से निकलते समय जो भयानक दुख इसने उठाए उनको कहते हुए अंत नहीं आ सकता।
बालपने में ज्ञान न लयो तरुण समय तरुणी रत रहो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो।
मनुष्य होकर भी इस जीव ने बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, यौवन के समय युवती में लीन रहा, बुढ़ापा अधमरे के समान है, फिर ये आत्मस्वरूप का दर्शन कैसे कर सकता है।
कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावा नल दयो, मरत विलाप करत दुख सहो।
कभी इस जीव ने अकाम निर्जरा की अर्थात दुखों को समता भाव से सहन किया, तो देवों की भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष्क जातियों में से किसी में देव शरीर धारण किया, किंतु वहां भी पांच इंद्रियों की चाह की अग्नि में जलता रहा और मरते समय विषयों के छूटने के कारण रो रो कर दुख सहन किया।
जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे।
यदि यह जीव वैमानिक देव भी हो गया तो सम्यक दर्शन के बिना दुख पाया, वहां से मरण करके पुनः स्थावर शरीर धारण किया, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का शरीर धारण किया। इस प्रकार इस जीव ने संसार के परिवर्तन पूरे किए हैं। इस प्रकार यहाँ पर प्रथम ढाल समाप्त होती है और द्वितीय ढाल आरंभ होती है।
ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत, दुख जन्म मरण ताते इनको सजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान।
इस प्रकार ये जीव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र के वश होकर संसार में भ्रमण करता है और जन्म मरण के दुख सहता है। हे सुजान, इस कारण इन तीनों को छोड़ो, मैं उनका संक्षेप में वर्णन करता हूँ, उसे सुनो।
जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्जे तिन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरति चिन मूरति अनूप।
मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत जीवादि तत्व हैं, उनमें ये जीव विपरीत श्रद्धान करता है। चेतन आत्मा का स्वरूप उपयोगमय है, वो अमूर्तिक चैतन्य मूर्ति और उपमा रहित है।
उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तीन न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पिछान।
उद्गल आकाश, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य, इनसे जीव का स्वरूप भिन्न है। ये मोही जीव जीव के उस स्वरूप को न जानकर और विपरीत श्रद्धा करके शरीर में अपनी पहचान करता है, अर्थात शरीर को ही आत्मा मानता है।
मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरो धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण।
मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा पशुधन है, मेरा प्रभाव है, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मैं बलवान हूँ, मैं दीन हूँ, मैं असुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ, इत्यादि रूप से ये जीव अहंकार और ममकार करता है।
तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाशमान। रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन।
ये शरीर के उत्पन्न होने को अपनी उत्पत्ति मानता है और शरीर के नाश होने को अपना नाश मानता है। ये अजीव तत्व में विपरीत श्रद्धान है। रागादि भाव जो प्रत्यक्ष रूप से दुख देने वाले हैं, उन्हीं का सेवन करता हुआ वह जीव सुख मानता है, ये आश्रव तत्व में विपरीत श्रद्धान है।
शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान।
यह जीव अपने स्वरूप को भूल कर शुभ और अशुभ कर्म बंध के फल में रति और अरति करता है, ये बंधत्व में विपरीत श्रद्धान है। वैराग्य और ज्ञान आत्म कल्याण के कारण है। उन्हें ये अज्ञानी जीव अपने को कष्टदायी मानता है, ये संवर तत्व में विपरीत श्रद्धान है।
रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान, सो दुख दायक अज्ञान जान।
इस अज्ञानी जीव ने अपनी शक्ति लगाकर इच्छाओं को नहीं रोका और निराकुलता रूप मोक्ष स्वरूप के प्रति उन्मुख नहीं हुआ। ऐसी मिथ्या प्रतीत युक्त जो भी कुछ ज्ञान है, उसे दुखदायक अज्ञान मिथ्या ज्ञान जानो।
इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्या चरित। यो मिथ्यात्वादिनि सर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिए सुतेह।
इन मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित जो विषयों में प्रवृत्ति होती है, उसको मिथ्या चारित्र जानो। जो अग्रहीत मिथ्यात्वादि हैं, वे इस प्रकार कहे गए हैं। अब जो गृहीत मिथ्यात्वादि हैं, उन्हें सुनिए।
जो को गुरु को देव को धर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सनेह। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कु गुरु जन्म जल उपल नाव। जे राग द्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। ते है को देव तिन की जो सेव, शठ करत न तिन भव घमन छेव। रागादि भाव हिंसा समेत, दरिवित तस थावर मरण खेत। जे क्रिया तिन्हें जान को धर्म, तिन सर धे जीव लहे अशर्म। या को गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान।
जो कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा है, वो दर्शन मोह को ही चिरकाल तक पुष्ट करती है। जो अंतरंग में रागादि धारण करते हैं, बाहर धन वस्त्र आदि से स्नेह राग करते हैं, जो महत्पना जताकर खोटा वेश धारण करते हैं, वे कुगुरु हैं। वे जन्म रूप जल में पत्थर की नाव के समान हैं। जो राग द्वेष रूपी मल से मलिन हैं, स्त्री गदा आदि सहित चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वे कुदेव हैं। जो मूढ़ उनकी सेवा करते हैं, उनके संसार भ्रमण का अंत नहीं होता। रागादि भाव हिंसा और त्रस स्थावर जीवों के घात रूप द्रव्य हिंसा सहित जो क्रियाएं हैं, उन्हें कुधर्म जानो। उनका श्रद्धान करने से जीव दुख पाता है, इसको गृहीत मिथ्यात्व जानो। अब जो गृहीत मिथ्या ज्ञान है उसे सुनो।
एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक प्रशस्त कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास तो है कुबोध बहुदेन त्रास।
एकांतवाद से दूषित विषयादि के पोषक कपिलादि द्वारा रचित समस्त अप्रशस्त शास्त्रों का जो अभ्यास है वो अति दुखदायक मिथ्या ज्ञान है।
जो ख्याति लाभ पूजा दिचाह धरि करन विविध विध देह दाह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करन छीन ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देव त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग।
जो ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह रखकर नाना प्रकार से देह का दाह करना अर्थात कष्ट देना है तथा आत्मा अनात्मा के विवेक से रहित होकर शरीर को क्षीण करने वाली जो जो क्रियाएं हैं वे सब मिथ्या चारित्र हैं। उन्हें त्यागो और आत्महित के मार्ग में लगो तथा संसार रूपी जाल के भ्रमण को त्याग दो। दौलतराम जी कहते हैं कि अब तुम अपनी आत्मा में ही भली भांति निमग्न हो जाओ। इस प्रकार यहाँ द्वितीय ढाल समाप्त हुई और तृतीय ढाल आरंभ होती है।
आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माहिन ताते शिव मगला क्यों चाहिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो।
आत्मा का हित सुख है, सुख वही है जो आकुलता रहित हो, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसी कारण मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार से जानना चाहिए। जो सत्यार्थ रूप है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है और जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है।
पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यत्व भला है आप रूप को जानत नो सो सम्यक ज्ञान कला है आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई।
पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि करना वो निश्चय सम्यक दर्शन है। आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। आत्मस्वरूप में स्थिरता से लीन रहना वही निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनिए, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है।
जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो का त्यों सर धानो। है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, सुन तिन को सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत उर आनो।
जिनेन्द्र भगवान ने जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्व कहे हैं, उनका जैसा का तैसा श्रद्धान करना वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब उनका स्वरूप कहते हैं, उनको सामान्य और विशेष रूप से सुनो और हृदय में उनकी दृढ़ प्रतीति करो।
बहिरातम अंतर आतम परमातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी।
बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, इस प्रकार जीव तीन प्रकार के हैं। जो मूढ़ जीव देह और जीव को एक गिनता है वो बहिरात्मा तत्व है। आत्म स्वरूप के जानने वाले ज्ञानी अंतरात्मा कहलाते हैं। अंतरात्मा जीव तीन प्रकार के हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित शुद्ध उपयोग वाले आत्मध्यानी मुनि उत्तम अंतरात्मा है।
मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती अनगारी, जघन कहे अविरत सम दृष्टि तीनों शिव मगचारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध तिन में घाति निबारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी।
जो देशव्रती श्रावक और अनगारी साधु हैं वे मध्यम अंतरात्मा हैं। अविरत सम्यक दृष्टि को जघन्य अंतरात्मा कहा है। जघन्य मध्यम उत्तम ये तीनों अंतरात्मा मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। परमात्मा दो प्रकार के हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। उनमें घातिया कर्मों का नाश करने वाले और लोक अलोक को देखने जानने वाले श्री अरहंत भगवान सकल परमात्मा हैं।
ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वाजित सिद्ध महंता, ते है अमल निकल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हे जानित जी अंतर आत्म हो जे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे।
जिनका ज्ञान ही शरीर है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नव कर्म इन तीनों प्रकार के कर्म फल से रहित हैं, ऐसे जो सिद्ध भगवान हैं वे निर्मल निकल परमात्मा हैं। वे अनंत सुख का भोग करते हैं। तुम बहिरात्म पने को हेय जानकर छोड़ दो और अंतरात्मा बनो एवं परमात्मा का निरंतर ध्यान करो, जिससे कि नित्य आनंद की प्राप्ति हो।
चेतनता बिन सो अजीव है पंच भेद जाके हैं। उद्गल पंच वरण रस गंध दु हरस वसुता के हैं। जिय पुद्गल को चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। तिष्ठत होय अधर्म सहाई जिन बिन मोटि निरूपी।
जो चेतनता से रहित है वो अजीव है। अजीव के पांच भेद हैं, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, जिसमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं, उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जो चलते हुए जीव और पुद्गल के चलने में सहायक है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। वो अरूपी, रूप रस गंध स्पर्श रहित है। जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल के ठहरने में सहायक है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जिनेंद्र देव ने उसे भी अमूर्तिक बताया है।
सकल द्रव्य को बास जास में तो आकाश पिछानो। नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। यूं अजीव अब आशव सुनिए मन वच काय त्रियोगा। मिथ्या विरति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा।
जिसमें समस्त द्रव्यों का वास रहता है उसे आकाश द्रव्य जानो। जो परिणमन रूप है वो निश्चय काल द्रव्य है और जो रात दिन आदि का व्यवहार है उसे व्यवहार काल जानो। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब आश्रव तत्व का वर्णन सुनिए। मन वचन काय ये तीन योग मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और प्रमाद सहित उपयोग, ये सब आश्रव हैं।
ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए। शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिए। तप बल ते विधि झरन नी जरा ताहि सदा चरिए।
ये आश्रव ही आत्मा के लिए दुख के कारण है, इसलिए इन आश्रवों को छोड़ देना चाहिए। जीव के प्रदेशों का कर्म से बंध जाना बंध है, ऐसा बंध कभी नहीं करना चाहिए। कषायों के शमन और इंद्रियों के दमन से कर्मों के आगमन का रुक जाना संवर है, इस संवर का आदर करना चाहिए। तप की शक्ति से कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं, इसका सदा आचरण करना चाहिए।
सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो सर धाता त्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। यहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो।
समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था है वो मोक्ष है। वो मोक्ष स्थाई सुख देने वाला है। सात तत्वों की इस प्रकार जो यथार्थ श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक्त है। जिनेंद्र देव परिग्रह रहित गुरु और दयामय श्रेष्ठ धर्म, इन्हें सम्यक्त का कारण मानो और अष्ट अंग सहित सम्यक्त को धारण करो।
वसुमद तार निवारित षठता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष बिना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंग अरु दोष पचीसो तिन संक्षेप हूँ कहिए बिन जाने तिन दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए।
आठ मदों को टाल कर तीन मूढ़ताओं को दूर कर छह अनायतनों का त्याग करो और शंकादि आठ दोषों को दूर कर संवेग आदि गुणों को चित्त में धारण करो। सम्यक्त के आठ अंग और 25 दोष होते हैं, उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं, क्योंकि दोष और गुणों को जाने बिना कैसे दोषों को दूर करेंगे और कैसे गुणों को ग्रहण करेंगे।
जिन वच में शंका न धारी वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने निज गुण अरु पर अगुण ढाके मानिज धर्म बढ़ावे कामादिक कर वृष ते चिगते निज पर को सुधि ढावे।
जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं रखना निःशंकित अंग है। धर्म धारण करके संसार सुखों की इच्छा नष्ट करना निष्कांक्षित अंग है। मुनियों का मलिन शरीर देखकर भी घृणा न करना निर्विचिकित्सा अंग है। यथार्थ और अयथार्थ तत्व की पहचान करना अमूल दृष्टि अंग है। अपने गुण और पर के अवगुण को ढकना उपगुहन अंग है, अथवा अपने धर्म और गुणों को बढ़ाना उपबृंहण अंग है। काम आदि वेदना के कारण धर्म से च्युत हुए स्वयं को या अन्य को धर्म में दृढ़ करना स्थितिकरण अंग है।
धर्मे सो गावच्छ प्रीति सम कर जिन धर्म दिपावे इन गुण ते विपरीत दोष बसु तिन को सतत खिपावे पिता भूप वा मातुल निप जो होए न ता मद ठाने मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद माने तप को मदन मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने कु गुरु कु देव कु वृष सेवक की नहीं प्रशंस उच रहे जिन मुनि जिन श्रुत बिन कु गुरादिक तिन्हें नमन करे है।
जिस प्रकार गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है इसी प्रकार धर्मात्माओं से निष्कपट प्रेम करना वात्सल्य अंग है। जैन धर्म की प्रभावना करना प्रभावना अंग है। इन आठ गुणों के विरुद्ध आठ दोष होते हैं, उनको सदा नष्ट करना चाहिए। यदि पिता या मामा अर्थात पितृपक्ष या मातृपक्ष में कोई राजा हो तो उसका मद न करें। रूप का मद नहीं करें, ज्ञान का मद नहीं करें, धन का मद नहीं करें, बल का मद नहीं करें, तप का मद नहीं करें, प्रभुता का मद नहीं करें। जो इन मदों को नहीं करता वो अपनी आत्मा को जानता है। यदि मद करता है तो यही मद आठ दोष कहलाते हैं और सम्यक्त में दोष उत्पन्न करते हैं। सम्यक दृष्ट जीव कुगुरु कुदेव कुधर्म और उनके सेवकों की प्रशंसा नहीं करता है। उनकी प्रशंसा करने से 6 अनायतन नामक दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव, जिनेन्द्र देव, निर्ग्रंथ मुनि और जिनेन्द्र कथित शास्त्र को छोड़कर अन्य कुगुरु आदि को नमस्कार नहीं करता है। यदि नमस्कार करे तो वे 3 मूढ़ता नामक दोष कहलाते हैं।
दोष रहित गुण सहित सुधी जे सम्यक दर्श सजे चरित मोह वश लेश न संजम पैसुर नाथ जजे गेही पै गृह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है।
जो बुद्धिमान दोष रहित और गुण सहित सम्यक दर्शन को धारण करते हैं यद्यपि उनके चारित्र मोह के उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं होता तो भी इंद्र उन्हें पूजते हैं। यद्यपि वे अविरत सम्यक दृष्टि हैं तो भी वे घर में अनुरक्त नहीं होते, जैसे कमल जल से पृथक रहता है, जैसे वेश्या का प्रेम होता है, अथवा कीचड़ में पड़ा हुआ भी स्वर्ण निर्मल रहता है।
प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिष वान भवन षड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सम सुखकारी सकल धर्म को मूल यही दिन करनी दुखकारी।
सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक को छोड़कर शेष 6 नरकों में ज्योतिष्क व्यंतर और भवनवासी देवों में नपुंसकों स्त्रियों में स्थावर में विकलक त्रय अर्थात 2 इंद्रिय त्रि इंद्रिय चो इंद्रियों में और पशुओं त्रियंचों में उत्पन्न नहीं होते। 3 लोकों और 3 कालों में सम्यक दर्शन के समान अन्य कुछ भी सुखकारी नहीं है। सम्यक दर्शन ही समस्त धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुख देने वाली हैं।
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्ता सम्यक्ता न लहे सो दर्शन धारो भव पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे।
सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और चारित्र समीचीनता को प्राप्त नहीं होते। इस कारण हे भव्य जनों इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। दौलत राम जी कहते हैं, हे चतुर तू समझ सुन और अब भी चेत जा। तू समय को व्यर्थ ही मत खो। यदि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य जन्म पुनः मिलना कठिन है। इस प्रकार यहां तृतीय ढाल समाप्त होती है और चतुर्थ ढाल प्रारंभ होता है।
सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान।
सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान की सेवा करो। जो सम्यक ज्ञान अनेक गुणों से युक्त है और स्व और पर पदार्थों को प्रकट करने के लिए सूर्य के समान है।
सम्यक एक साध है ज्ञान होए पै भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा ज्ञानी दुहो में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हो प्रकाश दीपक ते होई।
सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है तो भी इनका स्वरूप भिन्न समझना चाहिए। श्रद्धान तो सम्यक दर्शन का लक्षण है और यथार्थ जानना सम्यक ज्ञान का लक्षण है। दोनों में बाधा रहित यही भेद है। यद्यपि ये दोनों साथ साथ होते हैं फिर भी सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य समझो, जैसे कि दीपक से प्रकाश होता है।
तासु भेद दो है परोक्ष पर तच तिन माही मति शुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही अवधि ज्ञान मन पर ये दो है देश प्रत्यक्ष द्रव क्षेत्र परिमाण ली जाने जिय स्वच्छा।
उस ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। इनमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान तो परोक्ष हैं क्योंकि ये इंद्रिय और मन से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है क्योंकि ये आत्मा इनके द्वारा द्रव्य क्षेत्र का परिमाण लेकर रूपी पदार्थों को जानता है।
सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक काल प्रकट केवल भगवंता ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण।
केवली भगवान समस्त द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्यायों को एक ही समय में युगपद स्पर्श जानते हैं। संसार में ज्ञान के समान सुख का कारण अन्य कुछ भी नहीं है। ये जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करने के लिए परम अमृत रूप है।
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी के छिन नेत्र गुप्त ते सहज टरे ते मुनि व्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो।
ज्ञान के बिना करोड़ों जन्म तक तप करके जितने कर्म झड़ते हैं उतने कर्म सम्यक ज्ञान के मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति इन तीन गुप्तियों से क्षण मात्र में सहज ही टल जाते हैं। इस जीव ने मुनि व्रत धारण करके अनंत बार नव ग्रैवेयकों तक जन्म लिया किंतु अपने आत्मज्ञान के बिना रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया।
ते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी जे संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखी लीजे यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी इह विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी।
इस कारण जिनेन्द्र देव द्वारा कथित तत्व का अभ्यास कीजिए और संशय विभ्रम और मोह इन तीनों दोषों का त्याग करके आत्मा का दर्शन कीजिए। ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल और जिन वाणी का सुनना ये यूं ही चले गए तो फिर मिलने वाले नहीं, जैसे समुद्र में गिरी हुई मणि नहीं मिल पाती।
धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो।
धन समाज हाथी घोड़ा राज्य आदि अपने काम नहीं आते किंतु ज्ञान आत्मा का रूप है वो प्रकट हो जाए तो फिर वो सदा बना रहता है। उस ज्ञान प्राप्ति का कारण स्व पर भेद विज्ञान बताया है। अतः हे भव्य जीवो, करोड़ों उपाय करके भी उस ज्ञान को हृदय में धारण करो।
जी पूरब शिव गए जाही, अब आगे जई है तो सब महिमा ज्ञान तने मुनिनाथ कहई है। विषय चाह दव दाह जगत जन अरनि दझावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे।
जो पुरुष पहले भूतकाल में मोक्ष में गए हैं, अब वर्तमान में जा रहे हैं और आगे भविष्य में जाएंगे, ये सारी महिमा मुनिनाथ जिनेन्द्र देव ने ज्ञान की बताई है। विषयों की चाह रूपी दावाग्नि की जलन संसारी जन रूपी वन को जला रही है। उसको शांत करने का उपाय अन्य कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान रूपी मेघों का समूह ही उसे शांत कर सकता है।
पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजे बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय पुर लाओ, तोर सकल जगदंड फंद निज आत्म ध्याओ।
हे भाई, तुम पुण्य और पाप के फल में हर्ष या विषाद मत करो, क्योंकि ये समागम पुद्गल की पर्याय है, जो कि उत्पन्न होकर नष्ट होती है और पुनः उत्पन्न होती है। लाख बात की यही एक बात है और उसे ही हृदय में निश्चय करो कि समस्त संसार के दंड फंद तोड़कर अपनी आत्मा का ध्यान करो।
सम्यक ज्ञानी होए बहुर दिढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। तस हिंसा को त्यागे वृथा थावर न सहारे, पर बदकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। जन मृतिका बिन और नाही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नार सो रहे विरक्ता। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे।
सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र ग्रहण करो। सम्यक चारित्र के एक देश और सकल देश ये दो भेद कहे हैं। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करके स्थावर जीवों की भी व्यर्थ हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये प्रथम अहिंसा गुण व्रत है। दूसरों का नाश करने वाले कठोर और निंदा योग्य वचन नहीं बोलने चाहिए, ये दूसरा सत्याण व्रत है। जल और मिट्टी के सिवा और कोई भी वस्तु बिना दी हुई नहीं लेनी चाहिए, ये तीसरा अचौर्याणु व्रत है। अपनी स्त्री के सिवा अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहना चाहिए, ये चौथा ब्रह्मचर्याणु व्रत है। अपनी शक्ति का विचार करके थोड़ा परिग्रह करना चाहिए, ये पांचवा परिग्रह परिमाण व्रत है। तसो दिशाओं में जाने की सीमा निश्चित कर ले और उस सीमा का उल्लंघन न करे, ये दिग्व्रत गुण व्रत है।
ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमनागमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दियन सो उपदेश होय अघवनिज कृषि ते।
उस दिग्व्रत की सीमा के भीतर भी ग्राम गली घर बाग बाजार आदि क्षेत्र में गमनागमन का परिमाण करके अन्य समस्त क्षेत्र में गमनागमन का निवारण करना चाहिए, ये देशव्रत है। किसी की धन हानि या किसी की हार या जीत का विचार नहीं करना चाहिए। व्यापार या कृषि से पाप हो ऐसा किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। ये क्रमशः अपध्यान विरति और पापोपदेश विरति नामक अनर्थ दंड व्रत है।
करि प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है, असि धनुहल हिंसोप करण नहीं दे यश लाध है। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनी जे, और हो अनरथ दंड हेतु अग तिन्हे न की जे।
अविवेक से जल पृथ्वी वृक्ष और अग्नि का नाश नहीं करना चाहिए। ये प्रमाद चर्या विरति अनर्थ दंड व्रत है। तलवार धनुष हल आदि हिंसा के उपकरण देकर यश नहीं लूटना चाहिए। ये हिंसादान विरति अनर्थ दंड व्रत है। राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। ये दुःश्रुति विरति अनर्थ दंड व्रत है। पाप के कारणभूत अन्य जो भी अनर्थ दंड हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए।
धरि उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तजि पोषध धरिए। भोग और उपभोग नियम करे ममत निवारे, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे।
मन में समता भाव धारण करके नित्य सामायिक करनी चाहिए। ये सामायिक व्रत है। चारों पर्वों में दो अष्टमी और दो चतुर्दशी को व्यापार आदि पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषधोपवास करना चाहिए। ये प्रोषधोपवास व्रत है। भोग और उपभोग के पदार्थों का परिमाण करके उनसे ममत्व दूर करना चाहिए। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। मुनि को आहार देकर फिर स्वयं आहार करना चाहिए। ये अतिथि संविभाग व्रत है।
बारह व्रत के अति चार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारित सुदोष न सावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे।
बारह व्रतों के पांच पांच अतिचार दोष हैं, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। मृत्यु के समय समाधि मरण धारण करके उसके दोष दूर करना चाहिए। इस प्रकार श्रावक व्रतों का निरतिचार पालन करके सोलहवें स्वर्ग में उत्पन्न होता है। वहां से आयु पूर्ण करके मनुष्य जन्म पाकर और मुनि बनकर मोक्ष जाता है। इस प्रकार इस चतुर्थ ढाल में ग्रंथकार ने कहा है कि मनुष्य को समाधि मरण धारण कर पांचों दोषों से बचना चाहिए। अब पंचम ढाल आरंभ होती है।
मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोग न ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई।
हे भाई, मुनि बड़े भाग्यवान हैं जो महाव्रती होते हैं और संसार एवं भोगों से विरक्त रहते हैं। वे वैराग्य को दृढ़ करने के लिए माता के समान बारह अनुपेक्षाओं का भावनाओं का अनुचिंतन करते रहते हैं।
इन चिंतत सम सुख जागे, जिन ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिया आत्म जाने तब ही निज शिव सुख ठाने।
इन भावनाओं का चिंतन करने से समता का सुख जागता है, प्रकट होता है। जैसे वायु के लगने से अग्नि जागती है, प्रदीप्त होती है। ये जीव जब आत्मा को जानता है तभी वो अपना मोक्ष सुख प्राप्त करता है।
जो वन गृह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धनु चपला चपलाई।
यौवन घर पशुधन स्त्री हाथी घोड़ा आज्ञाकारी सेवक जन और इंद्रियों के भोग ये सब क्षणस्थाई हैं, जैसे इंद्रधनुष और बिजली चंचल है।
सुर असुर खगाधिप जेते मृग जो हरि काल दलेते मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई।
देव असुर विद्याधर नरेश आदि जितने भी हैं इन सबको काल ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सिंह हरण को नष्ट कर देता है। मणि मंत्र तंत्र बहुत भी हो तो भी कोई मरने से नहीं बचा सकता।
चहु गति दुख जीव भरे हैं परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार असारा या में सुख नाही लगारा।
जीव चारों गतियों में दुख सहते हैं और पंच परिवर्तन किया करते हैं। ये संसार सभी तरह से असार है, इसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है।
शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिय एक ही तेते सुत दारा हो ये नसीरी सब स्वार्थ के भीरी।
जितने भी शुभ अशुभ कर्म के फल हैं उन्हें ये जीव अकेला ही भोगता है। इनमें पुत्र स्त्री कोई भी भागीदार नहीं होता, सब स्वार्थ के ही साथी हैं।
जल पय जो जिया तन मेला पै भिन्न भिन्न नहीं भेला तो प्रगट जुदे धन धामा क्यों है एक मिल सुत रामा।
दूध पानी के समान जीव और शरीर का मेल है, परंतु वे भिन्न भिन्न है, एकम एक नहीं है। तो फिर धन घर पुत्र स्त्री ये सब प्रत्यक्ष ही जुदे हैं, ये मिलकर एक कैसे हो सकते हैं।
पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिती मैली नव द्वार बही घिनकारी अस देह करे किम यारी।
जो देह मांस खून पीव मल की थैली है और हड्डी चर्बी आदि से मैली है, जिसके नौ द्वारों से घिनावने मैल बहते रहते हैं, ऐसे शरीर से तू कैसे प्यार करता है।
जो जो गन की चपलाई ताते वे आश्रव भाई आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे।
हे भाई मन वचन काय इन तीन योगों की जो चंचलता है उससे आश्रव होता है, ये आश्रव बहुत दुखदाई है, उन्हें बुद्धिमान पुरुष दूर करते हैं।
जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तिन ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके।
जिन्होंने पुण्य और पाप नहीं किया और आत्मानुभव में अपने मन को लगाया उन्होंने ही कर्मों का आना रोका और संवर करके सुख प्राप्त किया।
निज काल पाए विधि झरना तासो निज काज न सरना तप कर जो कर्म खपावे तो ही शिव सुख दर्शावे।
अपना समय पाकर उदय में आकर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे आत्मा का काम नहीं चलता। सम्यक दर्शन सहित तप द्वारा जो कर्म नष्ट होते हैं उससे ही मोक्ष का सुख प्राप्त होता है।
किन्हु न कर्यो न धरे को शत द्रव्यमयी न हरे को सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता।
इस लोक को न तो किसी ने बनाया है न इसे कोई धारण करता है और न इसे कोई हरता नष्ट करता है। ये तो छह द्रव्यमय है। ऐसे लोक में ये जीव समता भाव के बिना निरंतर भ्रमण करता हुआ दुख सहता है।
अंतिम ग्रीवकलों की हद पायो अनंत बिरिया पद पैसम्या ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो।
इस जीव ने अंतिम गैवेयक की सीमा पर्यंत तक का पद अनंत बार प्राप्त किया किंतु सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनियों ने अपनी आत्मा में सिद्ध किया।
जो भाव मोह ते न्यारे दिग ज्ञान व्रतादिक सारे सो धर्म जबे जिय धारे तब ही सुख अचल निहारे।
मोह से पृथक जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व्रतादि रूप सम्यक चारित्र आदि समस्त भाव है वो धर्म है। जब जीव उस धर्म को धारण करता है तभी ये स्थिर सुख को पाता है।
तो धर्म मुनिन कर धरिए तिनकी कर तूती उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी।
वो रक्त त्रय रूप धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। अब उन मुनियों की क्रियाओं का वर्णन किया जाता है। हे भव्य जीवो उन मुनियों के धर्म को सुनिए जिन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की पहचान की। इस प्रकार मुनि धर्म के लिए साधक स्वरूप 12 भावनाओं का वर्णन करने वाली 5वीं ढाल समाप्त हुई और अब अंतिम और 6ठी ढाल आरंभ होती है।
षटकाय जीव नहननते सब विधि दरव हिंसा तरी रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी जिनके नलेश मृषान जल तृण हो बिना दियो गए 8-10 सहस विधशील धरि चिद ब्रह्म में नित रमि रहे। अंतर चतुर दश भेद बाहर संग दश धाते टले परमाद तज चहु कर्मही लख समित ईर्याते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरि भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे।
षटकाय जीवों की हिंसा न करने से सब प्रकार की द्रव्य हिंसा दूर हुई और रागादि परिणामों का निवारण करने से भाव हिंसा भी उत्पन्न नहीं हुई। ये अहिंसा महाव्रत है। जिन मुनिराजों के लेश मात्र भी असत्य वचन नहीं होते उनके सत्य महाव्रत होता है। जो जल और तृण तक बिना दिए ग्रहण नहीं करते उनके अचौर्य महाव्रत होता है। मुनि 18,000 प्रकार के शील को धारण करके चैतन्य रूप आत्म स्वरूप में नित्य रमण करते हैं। ये ब्रह्मचर्य महाव्रत है। मुनिराज, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों का त्याग करते हैं, ये परिग्रह त्याग महाव्रत है। मुनिराज, प्रमाद छोड़कर 4 हाथ आगे भूमि देकर ईर्ष्या समिति से चलते हैं, ये ईर्ष्या समिति है। मुनियों के मुख रूपी चंद्रमा से संसार का कल्याण करने वाले, सबका अहित दूर करने वाले, सुख देने वाले, सभी प्रकार का संशय हरने वाले, भ्रम रूपी रोग को नष्ट करने वाले वचन रूपी अमृत झड़ते हैं, ये भाषा समिति है।
46 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर आशन को ले तप बढ़ावन हित नहीं तन पोषते तज रसन को शुचि ज्ञान संजम उपकरण लख के धरे निर्जन तुथान विलोके तन मन मूत्र श्लेषम परिहरे।
मुनिराज, उत्तम कुल वाले श्रावक के घर 46 दोष टालकर स्वमद छोड़कर शरीर के पोषण के लिए नहीं अपितु तप बढ़ाने के लिए आहार ग्रहण करते हैं, ये एषणा समिति है। मुनिराज, शुद्धि ज्ञान और संयम के उपकरणों कमंडलु शास्त्र और पिच्छी को देखकर ग्रहण करते हैं और देखकर रखते हैं, ये आदान निक्षेपण समिति है। मुनिराज, जीव रहित स्थान देखकर शरीर के मल मूत्र और कफ आदि का त्याग करते हैं, ये प्रतिष्ठापन समिति है।
सम्यक प्रकार निरोधि मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाज खुजावते रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावनी तिन में नराग विरोध पंचेंद्रिय जयन पद पावनी।
मुनिराज, मन वचन काय का भली प्रकार निरोध करके अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, उनकी स्थिर मुद्रा को पत्थर समझकर हरिणों के झुंड उनके शरीर से अपनी खाज खुजाते हैं, उनके शरीर से अपना शरीर रगड़कर खुजली मिटाते हैं। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द, ये सुहावने हो या असुहावने हो, उनमें मुनिराज न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, इस प्रकार पंचेंद्रिय विजय का पद प्राप्त करते हैं। ये 5 इंद्रियों की विजय नामक मूल गुण है।
समता संहारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुत रति करे प्रतिक्रम तजेतन अहमेव को जिनके ननो नन दंत धोवन लेश अंबर आवरन भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन।
मुनिराज, समता सामायिक करते हैं, स्तुति पाठ करते हैं, जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं, नित्य स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और शरीर के अहंकार ममकार का त्याग करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, इस प्रकार ये 6 आवश्यक कहलाते हैं। जिनके स्नान नहीं, दंत धावन नहीं, वस्त्र का तनिक भी आवरण नहीं, जो पिछली रात में जमीन पर 1 करवट से थोड़ा सा शयन करते हैं।
एक बार दिन में आहार खड़े अलप निज पान में कच लोच करत न डरत परिशा सो लगे निज ध्यान में अरि मित्त महल मसान कंचन काचन इंदन थुति करन अर घाव तारण असि प्रहारण नी सदा समता धरन।
जो दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथ में आहार ग्रहण करते हैं, जो केश लोंच करते हैं और परिशहों से नहीं डरते हैं, ऐसे मुनिराज अपनी आत्मा के ध्यान में लगते हैं। इस प्रकार मुनियों के पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय विजय, छह आवश्यक, स्नान, अदंत धावन, नग्नता, क्षिति शयन, एक बार पाणिपात्र आहार, केश लुंचन और परिशह जय, ये 28 मूल गुण होते हैं। मुनिराज शत्रु मित्र में, महल और शमशान में, स्वर्ण और कांच में, निंदा और स्तुति में, अर्घ उतारने और तलवार के प्रहार में सदा समता धारण करते हैं।
तप तपे द्वादश धरे दश वृष रतन त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपा चरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि निते पर की प्रवृत्ति सब।
मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं, 10 प्रकार के धर्मों को धारण करते हैं और सदा रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करते हैं। कोई मुनि अन्य मुनियों के साथ विचरण करते हैं, कोई एकाकी विहार करते हैं। वे सांसारिक सुखों की कभी इच्छा नहीं करते हैं। इस प्रकार सकल संयम चारित्र का स्वरूप समझना चाहिए। इसके बाद अब स्वरूपाचरण चारित्र का स्वरूप सुनिए, जिसके प्रकट होने पर आत्मा की निधि, आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है और पर की सब प्रवृत्ति मिट जाती है।
जिन परम पैनी सुबुधि छैनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि पे निज भाव को न्यारा किया निज माहि निज के हेतु निज कर आप को आपे गया गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहो।
जिन्होंने अत्यंत तीक्ष्ण प्रज्ञा भेद विज्ञान रूपी छेनी द्वारा आत्मा से अनात्मा को पृथक कर दिया है और वर्णादि तथा रागादि द्रव्य और भाव दोनों से अपने भावों को अलग कर लिया, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा द्वारा अपनी आत्मा को स्वयं ग्रहण कर लिया, अब गुण और गुणी में, ज्ञाता ज्ञान और त्रेय में कुछ भेद नहीं रह गया।
जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रगति जहाँ दिग ज्ञान व्रत ये तीन धाई कैलसा।
जहाँ ध्यान ध्याता और ध्येय का विकल्प नहीं है और इनका वचन भेद भी नहीं है, जहाँ चेतन भाव ही कर्म है, चेतन भाव का स्वामी ही करता है और चेतना ही क्रिया है, वहाँ कर्ता कर्म और क्रिया तीनों ही अभिन्न हैं, अखंडित हैं, वहाँ तो शुद्धोपयोग की निश्चल दशा प्रकट हुई है। और जहाँ दर्शन ज्ञान और चारित्र तीन प्रकार के लगने पर भी एक रूप ही सुशोभित होते हैं।
परमाण नयन निक्षेप को न उदोत अनुभव में दिखे जिग ज्ञान सुख बल मय सदा नहीं आन भाव जो मो विषे मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते चिपिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित उनिकल निते।
स्वरूपाचरण के अनुभव की दशा में प्रमाण मय निक्षेप का प्रकाश विकल्प दिखाई नहीं देता। उस दशा में ज्ञानी की प्रतीति ऐसी होती है कि मैं सदा दर्शन ज्ञान सुख और बल में हूँ, मुझ में अन्य भाव नहीं है, मैं ही साध्य हूँ, मैं ही साधक हूँ, मैं कर्म और कर्म फल से बाधा रहित हूँ, मैं अखंड देदीप्यमान चैतन्य का पिंड हूँ, उत्तम गुणों का पिटारा हूँ और पापों से रहित हूँ।
यो चिंत निज में थिर भए तिन अकथ जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहो तब ही शुकल ध्यान अग्नि कर चौघाति विधि कानन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान कर भावी लोक को शिव मग कहो।
इस प्रकार अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करके अपने में स्थिर हो गए। उन्होंने जो अवक्तव्य आनंद प्राप्त किया वो आनंद इंद्र नागेंद्र नरेंद्र अथवा अहमिंद्र को भी नहीं कहा है। उसी समय शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ज्ञानी अंतरात्मा ने चार घातिया कर्म रूपी जंगल को जला दिया और केवल ज्ञान के द्वारा सबको तीनों लोकों में अनंत द्रव्य पर्यायों को देख जान लिया और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया।
घाति शेष अघाति विध छिन माहि अष्टम भूबसे वसु कर्म विनशे सुगुण वसु सम्यक्त आदिक सब लसे संसार खार अपार पारावार तर ती रही गए अविकार अकल अरूप शुद्ध चिद्रूप अविनाशी भय।
फिर अवशिष्ट अघातिया कर्मों को नष्ट करके क्षण मात्र में सिद्धालय में पहुंच गए। तब आठों कर्म नष्ट होने से सम्यत्व आदि समस्त आठों गुण शोभायमान होते हैं। अब वे संसार रूपी अपार क्षार समुद्र को तर कर तट पर पहुंच गए और विकार रहित शरीर रहित रूपादि रहित अविनाशी शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो गए।
निज माही लोक अलोक गुण पर्याय प्रतिबिंबित भए रही है अनंतानंत काल तथा यथा शिव परिणय धन धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया।
सिद्ध परमात्मा की आत्मा में लोक अलोक के समस्त गुण और पर्याय प्रतिबिंबित होते हैं। वे इसी अवस्था में अनंतानंत काल तक उसी प्रकार रहेंगे जैसे वे सिद्ध दशा में परिणत हुए हैं। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने मनुष्य भव पाकर आत्मकल्याण का कार्य किया। उन्हीं जीवों ने अनादि पंच परिभ्रमण को छोड़कर उत्तम सुख प्राप्त किया है।
मुख्योपचार दुभेदयो बड़ भाग रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तिन सुयश जल जग मल हरे इम जानि आलस हानि साहस ठानि यह सिख आदरो जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटित निज हित करो।
जो बड़भागी पुरुष इस प्रकार मुख्य और उपचार अर्थात निश्चय और व्यवहार रत्न त्रय को धारण करते हैं और भविष्य में धारण करेंगे वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनका सुयश रूपी जल संसार रूपी मल को हरता है। हे भव्य जनों, इस प्रकार जानकर, आलस्य दूर करके, साहस करके ये शिक्षा ग्रहण करो कि जब तक रोग और बुढ़ापे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तब तक शीघ्रता से आत्म कल्याण कर लो।
यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद वे ये क्यों रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे अब डाल हो सुखी सपद, रचिदाव मत चुका।
ये राग रूपी आग जीव को सदा जलाती है, इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन कीजिए। विषय कषायों का तूने चिरकाल तक सेवन किया, अब तो इन्हें त्याग कर अपना पद प्राप्त कीजिए। तू पर मद में क्यों रम रहा है? ये तेरा पद नहीं है, तू क्यों दुख उठा रहा है? दौलतराम जी कहते हैं कि अब अपने स्वरूप में रम कर सुखी हो, ये अवसर मत चूको।
एक नव वसु एक वाश की तीज शुक्ल वैशाख, करियो तत्व उपदेश यह लखि बुद्ध जन की भाख, लघुधि तथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावो भवकूल।
दौलत राम कबीवर कहते हैं कि संवत 1891 वैशाख शुक्ल तीज को बुद्धजन कवि की रचना देखकर उससे प्रेरणा प्राप्त करके ये तत्वोपदेश किया है। इसमें बुद्ध की अल्पता अथवा प्रमादवश कहीं शब्द या अर्थ की भूल रह गई हो तो हे विद्वत जनों, यदि तुम संसार सागर का किनारा पाना चाहते हो तो इसे सुधार कर पढ़ना, छल मत करना। इस प्रकार मुनि धर्म का वर्णन करने वाली छठी और अंतिम ढाल